नमस्कार भारत 28 नवंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान आज, क्या कहते हैं मतदाता?
आज मतदान का दिन है, मैं अपना वोट ऐसी सरकार बनाने के लिए देना चाहूंगी जो कि महिलाओं की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे तथा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करे।
राजस्थान चुनाव में भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग में भाषा का क्या गिर रहा स्तर?
जो स्तर गिरता जा रहा है दिन पे दिन, और महिलाओं के प्रति तो और भी लोगों की सोच इतनी भद्दी हो गई है कि अब राजनीति में महिलाएं कैसे आएंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है।
जानेंगे दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन अगर होता है तो सरकार का रवैया क्या होगा?
क्या करेगी क्या मालूम है। इस सरकार 2014 में प्रॉमिस वादा किया कि 12 महीने के अंदर स्वामीनाथन कमीशन का MSP प्रॉमिस देंगे,
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
BBC समाचार विकास त्रिवेदी से। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान होगा। मिजोरम पूर्वोत्तर का एकमात्र राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मतदान को देखते हुए दोनों ही राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। मिजोरम में फिलहाल कांग्रेस और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इन चुनावों की मतगणना 11 दिसंबर को होगी। देश भर में प्रतिबंधित माओवादी संगठन CPI माओवादी ने नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू को अपना नया महासचिव बनाया है। पिछले साल भर से महासचिव पद पर कार्यरत 73 साल के मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति को खराब सेहत की वजह से हटाए जाने की चर्चा थी। अब माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक बयान जारी कर बसवराजू की नियुक्ति की पुष्टि की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक पुतुल।
माओवादी दस्तावेजों के अनुसार आंध्र प्रदेश के वारंगल से इंजीनियरिंग में स्नातक नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू को 1980 में एक बार छात्र संगठनों के झगड़े में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से बसवराजू भूमिगत हैं और आज 63 साल के बसवराजू की कोई ताजा तस्वीर पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है। CPI माओवादी के सैन्य आयोग के प्रमुख बसवराजू पिछले 27 सालों से माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे हैं और 18 सालों से पोलित ब्यूरो के भी सदस्य रहे हैं। उन पर अलग अलग राज्यों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनाम है। पुलिस का कहना है कि मिलिट्री विभाग के प्रमुख होने के नाते बसवराजू को आक्रामक हमलों का विशेषज्ञ माना जाता है।
ये थे रायपुर से आलोक पुतुल। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जा रहे वैश्विक कदम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। बीते 4 सालों में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तापमान को खतरनाक स्तर पर बढ़ने से रोकने के लिए देशों को ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 12 सालों तक गैसों के उत्सर्जन में 3 गुना कटौती होनी चाहिए ताकि वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़ पाए। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। मध्य अमरीकी देश निकारागुआ की उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो डे ओर्टेगा पर अमरीका के वित्त मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाए हैं। रोसारियो पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन के आरोप हैं। वो निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा की पत्नी हैं। वो बीते एक दशक से अपने पति के साथ सत्ता चला रही हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस दंपत्ति के सुरक्षा सलाहकार पर बीते महीनों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए हथियारबंद संगठनों को आदेश देने का आरोप है। क्रीमिया की एक अदालत ने आदेश दिया है कि यूक्रेन के 3 जहाजों से पकड़े गए 12 यूक्रेनियाई नौसैनिकों को अगले 2 महीने हिरासत में रखा जाएगा। रविवार को यूक्रेन के 3 जहाजों को क्रीमिया के पास रूस ने हमला कर अपने कब्जे में लिया था। जहाज में पकड़े गए लोगों के साथ युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। हालांकि इन लोगों पर गैर कानूनी तरीके से रूस की सरहद में दाखिल होने का केस चलाया जाएगा। अमेरिका ने यूरोपीय देशों से इस मामले में यूक्रेन का साथ देने के लिए कहा है। यूक्रेन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि कर्ट वॉल्कर ने BBC को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अर्जेंटीना में होने वाले G20 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जिम्मेदारी है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत का सिलसिला बनाए रखने की कोशिश करते रहें। इस हफ्ते के आखिर में ट्रंप पुतिन से मिलेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को अगर सुलझाने का तरीका है तो वो बातचीत के जरिए संभव है। ये थे अमरीकी प्रतिनिधि कर्ट वॉल्कर के शब्द। अफगानिस्तान में तालिबानी चरमपंथियों का कहना है कि उन्होंने गजनी के पास बम से किए हमले में 3 अमरीकी सैनिकों को मार दिया है। BBC समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। मध्य प्रदेश और मिजोरम के लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा जिसके 5 बजे तक चलने की संभावना है। मतदान शुरू होने में भी समय है लेकिन जान लेते हैं कि उससे पहले मतदाताओं का क्या कहना है।
देखिए अभी तो मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, बाकी आपने पूछा है मतदान का, तो मतदान बड़ा जरूरी है देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। और रही बात मेरे मतदान की, तो मैं तो अपना मतदान, अभी तो सुबह का वक्त है, मैं 10 बजे के बाद ही जाऊंगा अपना मतदान करने और मतदान जरूर करूंगा। मेरा ये कहना है कि मेरा मतदान प्रदेश के और देश के विकास के लिए होगा। मैं ये चाहता हूँ ऐसी सरकार बने जो स्कूल और अस्पतालों की हालत और बेहतर करे और प्रदेश में और देश में सामाजिक समरसता का माहौल बना रहे, लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते रहें और हम सब मिलकर इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, इसीलिए मेरा मतदान है।
मेरा नाम अमित कुमार है। सबसे पहला काम आज मैं यही करूँगा, अपने मत का प्रयोग करूँगा और इसे मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मत का अपने प्रयोग करें। और मतलब मेरा यह मानना है कि प्रदेश में ऐसी सरकार आए जो गरीबों का भला करे, युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कानून लेके आए और सभी का भला हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, अपराध कम हो, और इन सब के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मतदान करें।
मेरा नाम प्रीति पांडे है। मैं अपना आज मतदान का दिन है, मैं अपना वोट ऐसी सरकार बनाने के लिए देना चाहूँगी जो कि महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे तथा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करें और बढ़ती हुई इस महंगाई को रोके, क्योंकि महंगाई ने सारे घर परिवार का बजट बिगाड़ के रख दिया है।
मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं पहली बार वोट डालने का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, आज मुझे भी वोट डालने का मौका मिल रहा है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर है। आइए सीधा रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां हमारे सहयोगी शुरह नियाजी मौजूद हैं। जी शुरह, हमें बताएं कि वहां चुनाव की कैसी तैयारियां हैं।
देखिए आज जो है पूरी 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में मतदान होने जा रहा है। मतदान जो है 227 सीटों पर सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा
जी।
और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र की सीटें हैं। चुनाव आयोग ने जो चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग 3,00,000 कर्मचारियों को लगाया है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 1,80,000 जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भी लगाया गया है। इनमें केंद्रीय बल है और राज्य के सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं।
जी शुरे, तो जैसे शुरे जिस तरीके से आपने कहा 3 सीटें बहुत थोड़े नक्सल प्रभावित इलाकों में, उसके अलावा कौन कौन सी सीटें हैं जिसपे नजर बनी रहेगी।
देखिए ऐसी बहुत सी सीटें हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें तो बुधनी जो है वो मुख्य सीट है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव से है। ये अरुण यादव की यहाँ एंट्री होने की वजह से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और अरुण यादव की वजह से ही सबकी निगाह यादव और ओबीसी वोटर्स जो हैं उन पर रहेगी। दूसरी सीट भोपाल से लगी हुई एक भोजपुर सीट है, जहां पर भाजपा के सुरेंद्र पटवा का मुकाबला कांग्रेस के सुरेश पचौरी से है। यहां भी कड़ी टक्कर देखने में आ रही है। ये चुनाव सुरेश पचौरी और सुरेंद्र पटवा दोनों के लिए राजनीतिक रूप से काफी अहम रोल अदा करेगा
जी।
इसके अलावा होशंगाबाद की सीट है जो एक महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए सरताज सिंह का मुकाबला विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा से है। सरताज सिंह के होशंगाबाद में जमीनी स्तर पर काफी पकड़ है, इसलिए मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया।
अगर बात करें शुरे साहब कमलनाथ जी की, जो छिंदवाड़ा उनका गढ़ रहा है, अगर उस इलाके के बारे में अगर आप बताएं, उन सीटों के बारे में, तो कहां किसका पड़ रहा ज्यादा भारी है।
देखिए कमलनाथ के जो क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस को एज है। कमलनाथ जो है, जो कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये दोनों ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ उनके क्षेत्र में उनकी पकड़ है, तो वहां पर मुकाबला खास तौर पे कांग्रेस को एज है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के ही बीच में वहां पर मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा।
अगर मुद्दों की बात करें शुरे साहब, तो क्या चुनावी मुद्दे रहे अब तक।
देखिए मुद्दों की अगर बात करें तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो चुनाव प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में रहा हो। मालवा निमाड़ क्षेत्र में किसानों का मुद्दा रहा तो दूसरे क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे रहे। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, इन्हें सभी ने सभाएं की, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को ही ज्यादा तवज्जो दी। तो देखने में ये आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों के फेवर में या अगेंस्ट में कोई लहर नजर नहीं आ रही। मतदाता जो है एक तरह से उसने चुप्पी बनाए रखी है, इसलिए बता पाना मुश्किल है कि आखिर उनका फैसला क्या होगा।
जी, अब ये इसका जवाब हमें 11 दिसंबर को ही पता चलेगा जब परिणाम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुरह नियाजी साहब। वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी आज विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान होंगे। मिजोरम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की सरकारों में भाजपा किसी न किसी तरह सरकार में जरूर शामिल है। आज होने वाले मतदान को लेकर क्या तैयारियां हैं, यही जानने के लिए मैंने अब से थोड़ी देर पहले गुवाहाटी में हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा से बात की।
देखिए, मिजोरम में 40 सीटों के लिए आज मतदान होने हैं। सुबह 7 बजे से वोट डलने शुरू हो जाएंगे। करीब 7,70,000 मतदाता यहाँ है। और जो मेन जो यहाँ जो मुकाबला है, भले ही बीजेपी प्रचार में और उसमें काफी बीजेपी ने जोर लगाया है, लेकिन जो मेन मुकाबला है वो यहाँ जो सत्ताधारी अभी पार्टी है कांग्रेस, उसके और जो मुख्य विपक्षी दल है मिजो नेशनल फ्रंट, उसके बीच में है। मिजोरम के अगर आप इतिहास देखें तो राज्य बनने के बाद इन दोनों पार्टियों का ही राज रहा है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ इस बार प्रचार में काफी ताकत लगाई है। यहाँ कई सारे इनके बड़े नेता, प्रधानमंत्री भी, नरेंद्र मोदी भी यहाँ रैली करने आए हैं। लेकिन जो सबसे जो गौर करने की बात यह है कि पूर्वोत्तर का ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का शासन को मुक्त करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य में जब असम में सरकार बनी थी 2016 में, तब नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेट अलायंस नाम का एक उन्होंने एक मोर्चा बनाया था, जिसमें उन्होंने उन सारी गैर कांग्रेसी पार्टियों को शामिल किया था और उन्होंने अपना एक नारा दिया था कि हम कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्यों को कांग्रेस से मुक्त कर देंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेट अलायंस है उसमें मिजो नेशनल फ्रंट भी उसका सदस्य है, जो अभी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहा है मिजोरम में। तो बीजेपी चाहती है कि किसी तरह अगर उसका खाता खुल जाए और मिजो नेशनल फ्रंट अगर आ जाती है तो वो उसमें सरकार में वो वहां शामिल हो जाएगी। ये उनका सबसे बड़ा अभी मिजोरम में उनका फोकस है।
जिस तरीके से बीजेपी का कई राज्यों में पूर्वोत्तर के बेहद प्रभाव पड़ा है, क्या उससे अछूता है अभी भी मिजोरम?
मिजोरम में जो बीजेपी के प्रभाव की जहां तक बात है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि देखिए, मिजोरम जो है वो पूरी तरह से फुल्ली एक क्रिश्चियन स्टेट है, एक ईसाई बहुल राज्य है। और यहाँ जब ये प्रचार के दौरान भी, मैं खुद मिजोरम के दौरे पर था पिछले सप्ताह, और प्रचार के दौरान भी मैंने देखा कि यहाँ जो बीजेपी जो है उसका जो फोकस है वो कुछ सीमावर्ती कुछ इलाके हैं जहाँ ब्रू जो जनजाति के लोग हैं वो 1997 में वहाँ हिंसा होने के कारण ब्रू लोग शरणार्थी के रूप में पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में चले गए थे। करीब 40,000 ब्रू लोग और उनमें 12,000 के आसपास यहाँ मतदाता हैं। कुछ बुद्धिस्ट, कुछ चकमा जनजाति के लोग हैं जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। तो अगर आप इस पूरे प्रचार को देखें, बीजेपी के पूरे प्रचार पर अगर आप नजर डालें, तो आपको लगेगा कि इनके पूरे नेताओं ने उसी बेल्ट पे ज्यादा प्रचार कहा है जहां विधानसभा की 9 सीटें हैं। कुल 40 सीटों पर यह मुकाबला है, इसलिए बीजेपी चाहती है कि वो किसी तरह यहाँ अपना खाता खोले। 1993 से बीजेपी इस राज्य में प्रयास कर रही है लेकिन अब तक उसका खाता यहाँ खुला नहीं है।
चुनाव प्रचार के दौरान क्या मुद्दे रहे?
देखिए, मिजोरम में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, वहाँ अभी भी जो डेवलपमेंट है उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। कांग्रेस 10 साल से शासन में है, कांग्रेस पर भी करप्शन से लेकर कई तरह के मतलब स्वच्छ शासन पर बात हो रही है। वहाँ एक बहुत बड़ा मसला रहा है ड्रग्स का, अल्कोहल का, तो उसको लेकर भी लोग बात कर रहे हैं।
मिजोरम में आज मतदान, अधिक जानकारी दे रहे थे दिलीप कुमार शर्मा। अब रुख करते हैं एक दूसरे चुनावी राज्य राजस्थान का, जहां सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। इस दौरान गिरते भाषा के स्तर के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन समाजशास्त्री कहते हैं कि मौजूदा राजनीति की भाषा ने समाज में भय और आक्रामकता पैदा की है। सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
साधु संत पीर फकीर मीठी वाणी का पैगाम देते रहे हैं, लेकिन राजनीति इसे नहीं मानती। कोई चोर कह रहा है तो कोई अपने विरोधी के कुनबे को चोर बता रहा है। चुनाव में सियासी दलों के बीच यह तल्खी और बढ़ जाती है। दोनों प्रमुख दल इस पर चिंता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन बदजुबानी के लिए अपने विरोधी सियासी दल को जिम्मेदार बताकर बरी हो जाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं, यह स्थिति चिंताजनक है, मगर इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है।
कि राजनीति में भाषा का गिरता हुआ स्तर निश्चित रूप से चिंता का विषय और चुनौती है। पिछले कुछ वर्षों में इसकी शुरुआत हुई है, पर शुरुआत हुई कहां से? जब सर्वोच्च स्तर पे बैठे हुए लोग अभद्र भाषा का खुलेआम प्रयोग करेंगे तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। याद करिए 2007 में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर शब्द प्रयोग किया, तो राहुल गांधी जी खून की दलाली शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके बारे में जाति बोधक शब्दों का प्रयोग करना, तो जब आप सर्वोच्च स्तर से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो स्थिति आती। पर मेरा मानना है राजनीति में सभी दलों का ये उत्तरदायित्व है कि वो भाषा के स्तर को आप बचाव करें, और जो पार्टियां बड़ी हैं उनका उत्तरदायित्व बड़ा है। तो मैं मानता हूं कि इसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा बड़ा है सीधे हुकूमत की।
कोई कहता है सियासत सेवा है, कोई इसे व्यापार बताता है, लेकिन व्यापार भी कहता है मीठा बोल पूरा तोल। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं।
इस तरह की बदजुबानी कभी भी राजनीति में नहीं होती। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमने उस वक्त का भी वो दौर भी देखा, कभी इस तरह की बदजुबानी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती थी। लेकिन ये एक नई परंपरा डाली जा रही है, और अफसोस की बात है कि ये सर्वोच्च नेतृत्व से आती है, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो कैसे सोनिया जी के बारे में अपशब्द प्रयोग करते थे, तब से लेकर अब तक। और इस पार्टी सरकार में हमने देखा जो भी गलत जुबान में बात करता है उसकी प्रमोशन हो जाती है।
भारत में शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही सुमन शर्मा कहती है, यह तस्वीर परेशान करने वाली है।
लाखों लाखों से जीत के जो लोग आते हैं वो लोग मास के लीडर होते हैं, और वो लोग जब मंचों पे ऐसी भाषा करते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेती, लेकिन जो स्तर गिरता जा रहा है दिन पे दिन, और महिलाओं के प्रति तो और भी लोगों की सोच इतनी भद्दी हो गई है कि अब राजनीति में महिलाएं कैसे आएंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जो लोग सोचते थे कि हम आधी आबादी हैं राजनीति में, हम सफर बनना चाहते हैं राजनीति के, वो महिलाएं बहुत चिंतित है, क्योंकि भाषा का जो घटिया स्तर, कोई किसी को नचनिया कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, तो ये बहुत घटिया स्तर है।
समाजशास्त्री डॉक्टर राजीव गुप्ता कहते हैं,
इस भाषा ने समूचे जनता के बीच में आक्रामकता पैदा की है, भय पैदा किया है। इस भाषा ने आतंक की स्थितियों को जन्म दिया है। जो गैर संस्थागत ताकतें हैं उनको सड़कों पर अपनी हिंसा दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस दे दिया है। समूचा देश हिंसा के दौर का एक हिस्सा बन गया है। जिस एज ऑफ वायलेंस है, वो वायलेंस आपने भाषा से शुरू किया था, आप इसे मॉब लिंचिंग तक ले आए, ग्रुप कन्फ्रंटेशन तक ले आए, सांप्रदायिकता के आधार पर पोलराइजेशन में ले आए। ट्रंप भी वही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं।
गंगा घाट पर घूमते कबीर कह गए हैं, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे एक करे घाव। अब ये सियासत को तय करना है कि वो दवा देती है या दर्द। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड, यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बिहार, उत्तर प्रदेश समेत भारत के अलग अलग हिस्सों से आकर किसान अगले एक दो दिनों में दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में किसानों का ऐसा प्रदर्शन कोई पहली बार हो रहा हो, लेकिन इन किसानों की क्या मांगे होती हैं और इन मांगों पर सरकार का क्या रुख होता है, यही जानने के लिए बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले ने जाने माने पत्रकार पी साईनाथ से बात की।
जो प्रोटेस्ट हो रहा है मुझको बहुत पॉजिटिव लगता है, इसलिए कि 20 साल का डीमोरलाइजेशन में, डीमोरलाइजेशन से क्या आती है, आत्महत्या आती है। प्रोटेस्ट में क्या आती है, एसर्शन ऑफ राइट्स आती है, डेमोक्रेटिक एसर्शन ऑफ राइट्स। तो आपको कौन सा चाहिए, एक्टिव प्रोटेस्ट चाहिए या पैसिव डीमोरलाइजेशन एंड आत्महत्या चाहिए?
जी बिल्कुल, ये डिसीजन किसानों के लिए तो आप जैसे बोल रहे हैं उनके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इतने प्रोटेस्ट के बावजूद अब और एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, सरकार का रवैया क्या होगा, कोई पॉजिटिविटी आपको लगती है इसके बारे में?
सरकार क्या करेगी क्या मालूम है। इस सरकार 2014 में प्रॉमिस वादा किया कि हमने 12 महीने के अंदर स्वामीनाथन कमीशन का MSP प्रॉमिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% हम देंगे 2014। 12 महीने के अंदर 2015 में वही सरकार कोर्ट में एफिडेविट दिया और आरटीए में जवाब दिया कि हम ये नहीं कर सकते हैं, इट विल डिस्टॉर्ट मार्केट्स। किसान वर्ग का पूरा दुनिया डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट कहीं डिस्टॉर्ट होगा तो वो प्रॉब्लम है। 2016 में राधा मोहन सिंह जी डिक्लेयर किया कि हमने कभी ऐसा एक वादा नहीं दिया। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी साहब ने कहा यार कोई उम्मीद नहीं था कि हम जीतेंगे चुनाव को, तो बहुत सारा प्रॉमिस बना दिया। 2016 में राधा मोहन सिंह जी डिनाई किया प्रॉमिस। 2017 में हमको सब प्रोपेगेंडा किया, स्वामीनाथन छोड़ो, शिवराज चौहान सिंह जी और आगे चले गए हैं स्वामीनाथन जी का, आप मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर मॉडल देखिए। 2018 में बजट स्पीच में, मैं आपको बजट का स्पीच पैराग्राफ नंबर्स दे रहा हूँ, 13 और 14 अरुण जेटली साहब का बजट स्पीच में, वो कहा हाँ हमने ये वादा किया और पूरा भी किया वादा। तो 5 साल में आपने 6 वर्जन लिया इसके ऊपर, मैं क्या कहूँ, सरकार आगे क्या करेंगी। तो लेकिन जो किसान मांग रहा है वो इतना डेमोक्रेटिक डिमांड है, हमारा संसद आम लोग के लिए भी काम करना चाहिए, सिर्फ कॉरपोरेट जगत का काम नहीं करना है, तो ये है डिमांड।
हम बार बार सुनते हैं जो वर्तमान सरकार है उनसे कहा जाता है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बजटरी एलोकेशन बढ़ाए हैं, MSP को लेके भी उन्होंने दावे किए हैं, महाराष्ट्र UP में बड़े मात्रा में लोन वेवर्स हुए, कर्ज माफी हुई है, तो क्या ये सब जो हो रहा है इसका सही में फायदा नहीं हो रहा है किसानों को?
एग्रीकल्चरल क्रेडिट बढ़ाया, एलोकेशन नहीं बढ़ाया। आप पिछले 20 साल में देखिए, 20-25 साल में पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हर साल कमती हो रही है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो रहा है, वो रिवर्स होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक देखो प्लान में और बजट में, लास्ट टाइम बजट में मैक्सिमम एलोकेशन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब प्रधानमंत्री था उसका आखिरी बजट में वो मैक्सिमम था। मैं कह रहा हूं कि आप उसका एक मिनिमम कर दो, इसलिए कि प्रॉब्लम बढ़ा हुआ। तो ये है, यू हैव टू स्पेंड मच मोर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज टू बी मच मोर, एक है। दूसरा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट हाँ बढ़ाया, 2 गुना बढ़ाया चिदंबरम, 2 गुना बढ़ाया प्रणब दा, 2 जेटली साहब ने भी बढ़ाया, लेकिन वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में नहीं जा रहा है, वो एग्री बिजनेस के हाथ में जा रहा है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र सब घोटाला में महाराष्ट्र पायनियर है, महाराष्ट्र का रूलिंग एलीट, नाबार्ड पिछले साल, नाबार्ड महाराष्ट्र का पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान, नाबार्ड मतलब ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट का जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है उसका, उसका पूरा क्रेडिट फ्लोट 2016-17 का 53% मुंबई शहर और सबर्ब्स में गया। मुंबई शहर में एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है लेकिन एग्री बिजनेस बहुत है। तो हमने इस एग्रीकल्चरल क्रेडिट लाखों, मीन पता नहीं कितना लाख करोड़ है उसमें, काश्तकार का हाथ से खींच के कंपनी के हाथ में दिया हमने, और इसलिए वो कर्जा में डूब के मर रहा है। तो ये सही है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट बढ़ा है लेकिन उनके हाथ में नहीं गया, जो छोटा और मार्जिनल किसान के हाथ में।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ। और अब नजर डाल लेते हैं आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। अखबारों के साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं मेरे साथ ही विकास त्रिवेदी। जी विकास,
शाहिद, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ज़्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर छाए हुए हैं, और वजह है मलिक का नया बयान। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और खबर में लिखा है कि मलिक ने कहा कि अगर मैं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशों के बीच दिल्ली की तरफ देखता तो मुझे सज्जाद को CM बनाना पड़ता, ऐसा करता तो इतिहास मुझे बेईमान के रूप में याद करता। इसी खबर पर हिंदुस्तान अखबार ने शीर्षक लगाया है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक विवादित बयान देकर फंसे।
यानी कि सत्यपाल मलिक, एक तरीके से कहा जाए तो ये सफाई की श्रेणी में अगर रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आरोप लगा रही थी कि वो दिल्ली के इशारों पे उन्होंने जो है विधानसभा भंग की है।
जी, जनसत्ता अखबार ने RBI गवर्नर के बयान को पहले पन्ने पर जगह दी है। उर्जित पटेल ने संसदीय समिति के समक्ष पेश होकर कहा है कि अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का अस्थायी प्रभाव पड़ा। पहले भी सरकार से लेके उर्जित पटेल को लेके जो रहा है विवाद रहा ही है,
क्रेडिट लेने की जो बात थी केंद्र सरकार को लेकर खबरें आ रही थी कि किस तरीके से RBI से पैसे को लेकर क्रेडिट मांगा जा रहा है।
इसी खबर के ठीक नीचे नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है करतारपुर गलियारे से जुड़ा, और उसमें लिखा है कि करतारपुर गलियारा भारत पाक की दुश्मनी मिटाएगा। और ज्यादातर अखबारों ने सिद्धू को आज अपने पहले पन्ने पर जगह दी, इसमें द हिंदू भी शामिल है और बाकी अखबार भी शामिल।
इसी से जुड़ी दैनिक जागरण पे खबर है विकास के, चालबाज पाकिस्तान ने खेला SAARC का कार्ड, कहा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करेगा आमंत्रित।
जी,
तो इसको लेकर बहुत चल रहा है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, शायद कल जो है पाकिस्तान में नींव रखी जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वहाँ उस हिस्से की नींव रखेंगे।
इसके अलावा अगर बात करें तो मिताली राज ने बीसीसीआई को चिट्ठी भेजकर कोच रमेश पोवार पर कई आरोप लगाए हैं। कई अखबारों ने बहुत प्रमुखता से तो नहीं पर इसको जगह दी है इस खबर को,
जिस तरीके से उनको ड्रॉप कर दिया गया था सेमीफाइनल मैच में।
इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने G20 सम्मेलन में मोदी, शिंजो आबे और ट्रंप के साथ मिलने की खबर को एक कॉलम में जगह दी है। तो ये पहली बार होगा कि तीनों नेता मिलेंगे और प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार की खबर है कि भारत सबसे अधिक झेल रहा है प्रकृति का प्रकोप। लैंसेट की रिपोर्ट है जिसके हवाले से कहा गया है कि 49% क्षति अकेले भारत में होती है जलवायु परिवर्तन से।
जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर शहर, जहां पर पुरुष हॉकी विश्व कप का शंखनाद हुआ। मंगलवार को पुरुष हॉकी विश्व कप का रंगारंग उद्घाटन समारोह कलिंगा स्टेडियम में हुआ, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को देख फैंस झूम उठे तो माधुरी दीक्षित की रंगारंग प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। उद्घाटन समारोह की मिनट दर मिनट अगर आपको रिपोर्ट दी जाए तो सबसे पहले टीमों की परेड हुई, इसके बाद 1975 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, फिर जय हिंद इंडिया की धुन पर ड्रोन के शो से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस ड्रोन शो में जब आसमान में भारत के झंडे की छवि उभरी तो स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। कॉम्पिटिशन्स के शुभारंभ की घोषणा के बाद सभी टीमों के कप्तानों को मंच पर बुलाया गया और फिर माधुरी दीक्षित मंच पर आईं, जिन्होंने अर्थ सॉन्ग में वेनिसेस ऑफ यूनिटी पर परफॉर्म किया। माधुरी दीक्षित मदर अर्थ के रूप में मंच पर पहुंची थीं। आपको बता दें उद्घाटन उत्सव में प्रस्तुत होने वाले अर्थ सॉन्ग का प्रमुख गीत ईस्ट टू वेस्ट था। इसके जरिए पूर्व से पश्चिम तक पूरे विश्व एक होने की बात की है। फिर कार्यक्रम में भारत के साथ शास्त्रीय नृत्य हुए। आपको बता दें हॉकी विश्व कप में दुनिया की चुनिंदा 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 पूल में बांटा गया है। इस टूर्नामेंट का आज भी शुभारंभ होगा कटक में, जिसमें बॉलीवुड के दबंग सलमान खान परफॉर्म करेंगे और एआर रहमान अपनी धुनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। और क्रिकेट की ओर अगर आपका ध्यान खींचे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 2022 में बर्मिंगम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में महिला टी20 क्रिकेट को शामिल करने के लिए आवेदन जमा कर दिया है। आईसीसी ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ साझेदारी में ये आवेदन जमा किया। इसमें 8 टीमों का टी20 टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव रखा गया है। अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में सिर्फ एक बार 1998 में पुरुष क्रिकेट को जगह दी गई थी, उसमें दक्षिण अफ्रीका ने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन भारतीय महिला टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महिला टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर रखने का विवाद थम नहीं रहा। इस मामले को लेकर मिताली राज ने बीसीसीआई को खत लिखते हुए ये कहा कि महिला टीम के मुख्य कोच रमेश पवार ने मिताली राज को अपमानित किया। मिताली राज ने लिखा कि वेस्टइंडीज में खेले गए वर्ल्ड टी20 में लगातार अर्धशतक के बावजूद सेमीफाइनल में उन्हें मौका नहीं दिया गया। इस मुद्दे पर मिताली राज और हरमनप्रीत कौर ने बीसीसीआई से बैठक की, लेकिन बैठक की विस्तार से रिपोर्ट अब तक मीडिया में नहीं जारी की गई है।
अब से कुछ ही देर में भारत में बजेंगे सुबह के 7। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं विकास त्रिवेदी से।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर आज सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी विधानसभा की 40 सीटों के लिए मतदान होगा। देशभर में प्रतिबंधित माओवादी संगठन CPI माओवादी ने नंबाला केशव राव बसवराजू को अपना नया महासचिव बनाया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए जा रहे वैश्विक कदम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। बीते 4 सालों में पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ा है। मध्य अमरीकी देश निकारागुआ की उपराष्ट्रपति रोसारियो मुरिलो डे ओर्टेगा पर अमरीका के वित्त मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाए हैं। रोसारियो पर भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन के आरोप हैं। क्रीमिया की एक अदालत ने आदेश दिया है कि यूक्रेन ने 3 जहाज़ों से पकड़े गए 12 यूक्रेनियाई नौसैनिकों को अगले 2 महीनों में हिरासत में रखा जाएगा। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की अंतिम सीनेट सीट के लिए मिसिसिपी प्रांत में चुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर रिपब्लिकन किंडी
हाइट स्मिथ के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के ब्लैक माइक एसपी हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।